ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस पखवाड़े हम आपसे 16 से 31 मार्च के अंक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भारत में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और केंद्रीय चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोकतंत्र को सशक्त बनाने वाली चुनाव प्रक्रिया के लिए तैयार है। 7 चरणों में 18वीं लोकसभा चुनाव और उसके साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। इस लोकतंत्र के त्योहार का परिणाम 4 जून 2024 को निर्धारित है, यानी देश के 97 करोड़ मतदाताओं ने किसे नए भारत का निर्माता चुना है, इसकी तस्वीर उस दिन देश के सामने आ जाएगी। इस चुनाव की पूरी यात्रा हमारे आने वाले विभिन्न अंकों में समाहित होगी, लेकिन अभी बात करते हैं 16 से 31 मार्च के पखवाड़े वाले अंक की। श्रोताओं, आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, दांडी यात्रा हो, जन जन का संकल्प बन गया था। देश के लिए आज वैसे ही विकसित भारत का संकल्प मील का पत्थर बन गया है। आजादी के कई दशक तक उस आजादी का एहसास अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाया था। अब आजाद भारत में विकसित भारत का संकल्प और उसे यथार्थ में बदलने की यात्रा देश के 140 करोड़ नागरिकों के प्रयास से चल रही है। लोकतंत्र का महापर्व यानी आम चुनाव उस यात्रा को सार्थक दिशा देने वाला होगा। एक ऐसी यात्रा जहां सबका एकमात्र समान लक्ष्य हो, विकसित भारत। उस सपने को साकार करने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों ने न केवल सपना देखा है बल्कि उसे यथार्थ बनाने के लिए सारथी के रूप में चल पड़े हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देश की आजादी के लिए था, तो विकसित भारत का संकल्प राष्ट्र प्रथम सर्वोपरि की सोच और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की प्रेरणा से देश के हर नागरिक को आत्मसम्मान से भरा जीवन देने और राष्ट्र को नए सिरे से परिभाषित कर दुनिया में उसे सिरमौर बनाने की बन गई है अमृत यात्रा। राष्ट्र प्रथम और अंत्योदय के मंत्र से विकास रथ कैसे बना विकसित भारत का विश्वास रथ, यही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है।
राष्ट्र प्रथम और अंत्योदय ही विकसित भारत के संकल्प का आधार है और यह एकात्म मानववाद और अंत्योदय का दर्शन है जो मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। इस सिद्धांत को सबका साथ सबका विकास के साथ मिला हुआ देख सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय और उनकी आर्थिक नीतियों ने हमेशा गरीबों की भलाई पर जोर देने की बात की है। उनके आर्थिक विचार में अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति शामिल रहा। उन्होंने कहा था, आर्थिक नीति निर्धारण और प्रगति की सफलता का पैमाना यह नहीं है कि समाज के सबसे शीर्ष पर मौजूद व्यक्ति को उसका कितना फायदा मिल रहा है, बल्कि यह है कि समाज में जो लोग सबसे नीचे हैं, उन्हें उन नीतियों का कितना फायदा मिला है। अंत्योदय का मतलब समाज के सबसे निचले स्तर पर मौजूद व्यक्ति का कल्याण है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह हमारी सोच और हमारे सिद्धांत हैं कि ये गरीब और अशिक्षित लोग हमारे ईश्वर हैं। यही हमारा सामाजिक और मानवीय धर्म है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कहना था, समाज की अंतिम सीढ़ी पर जो बैठा हुआ है, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, किसान हो, सबसे पहले उसका उदय होना चाहिए। राष्ट्र को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए समाज को अंतिम सीढ़ी पर ये जो लोग हैं, उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यही विचार अंत्योदय के मूल का जनक है। एकात्म मानववाद और अंत्योदय के जिस रास्ते पर देश चल पड़ा है, उसके प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही हैं। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय यानी अंत्योदय का दर्शन देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद और अंत्योदय मुंबई में 22 से 25 अप्रैल 1965 में 4 भागों में दिए गए भाषण का सार है। अंत्योदय का भाव आज देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए एक शब्द नहीं मूल मंत्र बन गया है। देश का प्रत्येक नागरिक यह भाव रखता है कि सबका समान विकास हो और हमारा भारत दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरे।
विकसित भारत के मजबूत आधार के रूप में सहकारिता से समृद्धि पर भी हमारे इस अंक में एक विशेष हिस्सा है। खेती किसानी को मजबूत करने में सहकारिता की बड़ी भूमिका है। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। कृषि प्रणालियों के आधुनिकीकरण के बिना विकसित भारत का संकल्प भी अधूरा होगा। सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के अनुरूप देश भर में पैक्स में कम्प्यूटरीकरण का काम होगा। इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को फिर से प्रयोग में लाना और छोटे सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है। भारत में गांव की प्राचीन व्यवस्था में इसी मॉडल का पालन किया जाता था। सहकारिता में दैनिक जीवन से जुड़ी सामान्य प्रणाली को एक बड़े उद्यमी प्रणाली में बदलने की क्षमता है। यह ग्रामीण तथा कृषि अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने का एक कारगर तरीका है। श्रोताओं, अब हम बात करेंगे अपने इस अंक के व्यक्तित्व के बारे में, जिनकी जयंती 16 मार्च को थी। ऐसे व्यक्तित्व जिनको 8 दिसंबर 2021 को एक हादसे में खोने पर समूचा राष्ट्र गमगीन हो गया था। ऐसे एक असाधारण नायक थे जनरल बिपिन रावत, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यह एक ऐसा पद था जिसकी मांग 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से ही हो रही थी। जनरल रावत बाद में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। जनरल बिपिन रावत एक दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता, एक विद्वान सैनिक और एक सैन्य सुधारक के साथ साथ अपने सिद्धांत, दृढ़ विश्वास और निर्णयकर्ता के रूप में जाने जाते थे। 4 दशक से अधिक के करियर में जनरल रावत की उपलब्धियां सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रही। जनरल रावत एक सच्चे और समर्पित सैनिक की तरह अपनी जान की परवाह किए बिना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समर्पित रहे। उनकी प्रतिबद्धता, उनका समर्पण और देशभक्ति का भाव भावी पीढ़ियों को करता रहेगा सदैव प्रेरित।
देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था। जनरल बिपिन रावत राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और उच्च कमान राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के छात्र थे। उन्होंने अमेरिका के फोर्ट लीवनवर्थ से कमान और जनरल स्टाफ विषय की पढ़ाई की। सेना में अपने लंबे कैरियर के दौरान जनरल रावत ने सेना के पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर थल सेना की एक बटालियन का तथा कश्मीर में सेना की टुकड़ियों का नेतृत्व किया। पूर्वोत्तर में उग्रवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनरल रावत ने कांगो गणराज्य में विभिन्न देशों की सेनाओं की एक ब्रिगेड की भी कमान संभाली। उनके पास सेना की पश्चिमी कमान में कई सैन्य अभियानों के संचालन का अनुभव रहा और बाद में 31 दिसंबर 2016 में उन्हें थल सेना प्रमुख बनाया गया। वर्ष 2016 में नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। सेना के आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी और भविष्य में बदलने वाली युद्ध रणनीति पर जनरल बिपिन रावत का खासा जोर था। इतना ही नहीं, उनके पास ऊंचाई वाले स्थानों पर युद्ध और आतंकरोधी अभियानों का खासा अनुभव था। भारतीय सेना प्रमुख रहने के बाद जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभाला था। उन्होंने भारत के संयुक्त थिएटर कमांड की नींव रखने और सैन्य उपकरणों के बढ़ते स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जनरल बिपिन रावत एक जांबाज सैन्य कर्मी थे और वह देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम करते रहे। उनका पूरा जीवन एक योद्धा की तरह हमेशा अनुशासित और देश की आन बान शान के लिए हर पल समर्पित रहा। जनरल रावत के उत्साह ने सशस्त्र बलों को अग्निपथ योजना के विचार को वास्तविकता में तब्दील करने के लिए प्रेरित किया। अग्निपथ स्वतंत्रता के बाद से सशस्त्र बलों द्वारा सबसे बड़ा परिवर्तन है। सेना में 41 वर्षों से ज्यादा समय के कामकाज के अनुभव के आधार पर जनरल रावत को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई वीरता और अति विशिष्ट सेवा पदकों से सम्मानित किया गया। जनरल रावत को 2022 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया। जनरल बिपिन रावत के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि वह एक उत्कृष्ट सैनिक थे। एक सच्चे देशभक्त के रूप में उन्होंने सशस्त्र बलों और समस्त सुरक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण में बहुमूल्य योगदान दिया। सामरिक मामलों में उनकी दूरदृष्टि असाधारण थी। उनके निधन से मुझे गहरा सदमा पहुंचा है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में जनरल बिपिन रावत ने रक्षा सुधारों सहित सशस्त्र बलों से संबंधित विभिन्न आयामों पर उत्कृष्ट काम किया। उन्हें सेना में अपनी सेवाएं देने का व्यापक अनुभव था। भारत कभी भी उनकी असाधारण सेवा को नहीं भूलेगा।
श्रोताओं, आज के अंक में इतना ही। इस अंक के बारे में विस्तार से जानकारी पत्रिका के प्रकाशित अंक से ले सकते हैं। अगले सप्ताह इस अंक के अन्य विषयों के बारे में परिचर्चा को हम जारी रखेंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB India है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।